الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: أليس الله بكاف عبده. صلوات پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ٹوٹے دلوں کو سہارا دیا کہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے دل شکستہ ہیں، جو دنیا سے مایوس ہو چکے ہیں، جو پرواز کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں سہارا دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ گویا ایک سوال ہے جو ذہن بشریت میں ایجاد کیا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ تم دنیا کی ہر رنگینی سے اپنا دل لگا لیتے ہو، تم ہر کس و ناقص کے سامنے سر جھکا دیتے ہو، کیا وہ جو تم اس سے مانگ کر ذلیل ہو رہے ہو میں تمہیں نہیں دے سکتا تھا؟ تم اس سے مانگتے ہو، ملتا بھی نہیں ہے، ذلیل بھی ہو جاتے ہو، لیکن جب میں تمہیں دوں گا اس سے بڑھ کر دوں گا اور تمہیں عزت بھی دوں گا، تمہیں ذلتوں سے نکال کر عزتوں کی طرف لے جاؤں گا، مگر مجھ سے دل لگا کر دیکھو۔ ایک بادشاہ نے اپنے محل کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ آج جو بھی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی۔ بادشاہ بڑا سخی تھا، سچا تھا، سچ بولتا تھا، لوگوں کو اس کی بات پر اعتبار تھا، اور جیسے ہی محل کے دروازے کھلے جوک در جوک لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے۔ کسی نے سونے پر ہاتھ رکھا تو بادشاہ نے اسے سونا دے دیا، کسی نے جواہر پر ہاتھ رکھا تو بادشاہ نے اسے جواہر دے دیے، किसी ने किसी और कीमती चीज पर हाथ रखा तो बादशाह ने उसे उस चीज से नवाज दिया। इनमें एक था जो सबसे ज्यादा होशियार था। उसने दाखिल होकर न यहां देखा न वहां देखा, दाखिल होने के बाद बादशाह के ऊपर हाथ रख दिया और कहा, मुझे न सोना चाहिए न चांदी न जवाहर न दुनिया, मुझे तो बादशाह चाहिए। नतीजा ये हुआ, बादशाह भी उसका हुआ और बादशाह की सारी सल्तनत उसकी हो गई। हमारे यहां भी यही है, हम खुदा को छोड़कर हर चीज पर हाथ रख देते हैं, लेकिन अगर खुदा को हासिल कर लिया तो खुदा भी मिल जाएगा, खुदा की सारी चीजें भी मिल जाएंगी। अब समझ में आया क्यों परवरदिगार आलम ने अपना सब कुछ हुसैन इब्ने अली को दे दिया। क्यों दे दिया परवरदिगार आलम ने अपना सब कुछ हुसैन इब्ने अली को दे दिया? तौहीद के दायरे में अगर इस बात को सही साबित किया जाए, सब परवरदिगार आलम का, क्योंकि हुसैन इब्ने अली ने सब कुछ छोड़कर परवरदिगार आलम को हासिल किया। और हुसैन इब्ने अली जब मदीने से निकले थे तो ये कहते हुए निकले थे कि परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या। दुआ अरफा का जुमला था ये कि जो अरफात के मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर कि जब बिल्कुल ही अलग फजा बनी हुई थी, हुसैन इब्ने अली मदीने से निकलकर करबला जा रहे थे और बिल्कुल सन्नाटा था, महारिम का मजमा था, कोई नामहरम नहीं था, नामहरम से मुराद नामहरम राज नहीं था। ऐसे आलम में जब सब अपने थे और सब वो थे जो साहिब जर्फ थे, ऐसे मौके पर हुसैन इब्ने अली की जबान पर जुमले जारी हो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, करबला के जानिब कदम बढ़ते जा रहे हैं और हुसैन कह रहे हैं, परवरदिगार जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या, जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या। क्यों? हुसैन उस मंजिलत पर हैं, हुसैन समझ रहे हैं अगर परवरदिगार मिल जाएगा तो परवरदिगार आलम के बाद जो भी कुछ है, मर्जी भी उसकी मिल जाएगी, रजा भी मिल जाएगी, तस्लीम भी उसकी मिल जाएगी, दुनिया भी मिल जाएगी, जन्नत भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी। और यही हुआ, सब मिल गया हुसैन इब्ने अली को। मैं एक हदीस पढ़ता हूं, उसके बाद ये बात वाज़े हो जाएगी। आवाज दी, ए आदम के बेटे, ये वो अहादीस हैं कि जिन पर हमें सोचना चाहिए। हदीस कुदसी है और मैं कई मर्तबा हदीस कुदसी का माना बयान कर चुका हूं। ए आदम के बेटे, खलकतुल अशिया लिअजलिक, है आदम के बेटे सुन, मैंने सारी दुनिया तेरे लिए सजाई है, सब कुछ तेरे लिए बनाया है, जमीन तेरे लिए बिछाई है, आसमान तेरे लिए बुलंद किया है, समंदर में तुगयानी तेरे लिए रखी है, दरिया में रवानी तेरे लिए है, फूलों में महक तेरे लिए है, फलों में मिठास तेरे लिए है, सब्जी में सब्जा तेरे लिए है, सितारों में चमक तेरे लिए है, सब तेरे लिए है अगर तू अपने आप को पहचान। सब तेरे लिए सजाया गया है, ये कायनात ये दुनिया सब तेरे लिए है। यबना आदम खलकतुल अशिया लिअजलिक, ए आदम के बेटे मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाया है, वखलकतुका लिअजली, और तुझे अपने लिए बनाया है, यानी अगर तू मेरा हो जाए तो जमीन भी तेरी हो जाएगी, आसमान भी तेरा हो जाएगा, समंदर भी तेरा हो जाएगा, मलक भी तेरा हो जाएगा, शजर भी तेरा हो जाएगा, सब तेरा हो जाएगा अगर तू मेरा हो जाए। और अगर तू मेरा ना हुआ तो तू जगह जगह जाएगा, मंजिल मंजिल जाएगा, मरहले मरहले जाएगा, मगर जलील होता रहेगा, रुस्वा होता रहेगा, तू दुनिया के पीछे जाएगा, दुनिया तेरे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर तूने दुनिया को छोड़कर मेरी तरफ रुख किया, दुनिया तेरे पीछे पीछे आएगी। कहते हैं दुनिया की मिसाल साए की मानिंद है, दुनिया यानी साया। क्यों? इसलिए कि इंसान अगर साए को पकड़ना चाहे तो साया कभी भी हाथ नहीं आएगा, लेकिन अगर साए को छोड़ के जाए और साये से बेएतनाई करके आगे बढ़ जाए तो साया कदम ब कदम उसके साथ चलेगा। दुनिया भी ऐसा ही है, दुनिया को जितना हासिल करें दुनिया हाथ नहीं आएगी, लेकिन अगर दुनिया को छोड़ दिया तो दुनिया पीछे पीछे आएगी। जाहिरन ये बात इससे पहले मेरा ख्याल है कि शायद अर्ज की हो, अगर की है तो तदक्कुर हो जाएगा, एक चोर था, खास तौर पे नौजवान जहां तक पैगाम जा रहा है, एक चोर था बादशाह के महल में चोरी करने गया और चोरी का इरादा रखता था। उसने देखा कि अभी बादशाह और मलका दोनों जाग रहे हैं, अभी तो चोरी नहीं हो सकती। उसने उन दोनों के सोने का इंतजार किया, लेकिन इस दौरान उसने बादशाह मलका दोनों की गुफ्तगू सुनी। दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि देखो अब हमारी शहजादी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, इसकी शादी कर देना चाहिए। क्या ठीक है, मगर शादी किससे करें? तो बादशाह ने कहा कि देखो अल्लाह ने सब कुछ तो हमें दिया है, किस चीज की कमी है हमारे पास? कोई ऐसा हो जो मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाला खुदा वाला बंदा हो, उससे शादी कर देंगे और सब कुछ तो हमारे पास सही, सब उसका हो जाएगा हमारे बाद। का ठीक है, ये भी सही है, मगर आज के जमाने में ऐसा मुत्तकी परहेजगार लाए तो कहां से लाए? और ये बहस उस जमाने में हो रही थी, आज तो फिर आज है, आज के जमाने में कहां से लाए? फिर मलका ने कहा कि इसमें क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है? बहुत ही सादा सा तरीका है, तुम अपने वजीर को मस्जिद भेज दो, रात हो रही थी, मस्जिद भेज दो, जो सबसे पहले मस्जिद में आए समझ लो वही मुत्तकी और परहेजगार है। अब देखिए मिलाप जब खराब हो तो बात कहां तक जाती है, हर मस्जिद में आने वाला मुत्तकी नहीं होता। पैंचे चढ़ाने से, गर्दन टेढ़ी करने से, हाथ में तस्बीह लेने से तकवा हासिल नहीं होता, बल्कि तकवा एक दिली कैफियत है जो सिर्फ परवरदिगार आलम की खशियत की वजह से इंसान पर तारी होती है, जो दूसरों को नजर नहीं आती। ये वो राबिता है जो इंसान अपने और परवरदिगार आलम के दरमियान महसूस कर रहा होता है, और बस किसी दूसरे को इसकी खबर भी नहीं होती, बस ये जानता है और उसका परवरदिगार जानता है। क्या ठीक है, जो सबसे पहले मस्जिद आ जाए उससे अपनी बेटी की शादी कर देंगे? क्या ठीक है, ये दोनों तो सो गए, लेकिन वो चोर जो चोरी करने आया था उसने सोचा जब सब मुफ्त हाथ आ रहा है, बगैर जहमत के हाथ आ रहा है, बगैर मशक्कत के हाथ आ रहा है, तो मेहनत क्यों करूं, चोरी क्यों करूं? वो गया और जाकर सजदे में सर रख दिया। सुबह बादशाह के वज़ीर आए, उन्होंने देखा कि बादशाह ने तो कहा था कि जो सबसे पहले मस्जिद आए उसे ले आना, ये वो है जो पूरी रात सजदे में पड़ा रहा, चलो लेकर चलो बादशाह के पास, ये सबसे ज्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है। लेकर चले बादशाह के पास, लेकर आए और कहा बादशाह सलामत, ये वो है कि जो सारी रात सजदे में पड़ा रहा, परवरदिगार को सजदा करता रहा। बादशाह ने कहा ठीक है, इसको लेकर जाओ, लिबासे फाखरा पहना कर लाओ, बेहतरीन लिबास पहना कर लाओ। उसे लेकर गए, लिबासे फाखरा पहना कर लाए, और फिर अब बादशाह ने अपना मुद्दा बयान किया और कहा कि देखो मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं, तुम बताओ तुम्हें कबूल है? अब आप मुझे बताइए, इस चोर ने ये सब कुछ क्यों किया था? ताकि बादशाह की बेटी से शादी हो जाए। अब इसका मकसद इसके सामने है, बादशाह खुद कह रहा है कि मेरी बेटी से शादी करो। जैसे ही बादशाह ने यह कहा कि मेरी बेटी से शादी करो, इसने कहा बादशाह सलामत, मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी। बादशाह ने कहा कि लोग मरा करते हैं, ऐसे रिश्ते नहीं आते, तुम मेरी बेटी को रद्द कर रहे हो। उसने कहा बादशाह सलामत, आपकी बेटी से शादी नहीं करनी। बादशाह ने उसे दौलत की लालच दी कि इतनी दौलत दूंगा, मेरी बेटी से शादी कर लो। उसने कहा नहीं करूंगा। दौलत बढ़ाता रहा, यहां तक कि बात आधी सल्तनत तक आई। उस चोर ने कहा नहीं, आपकी बेटी से शादी नहीं करनी। बादशाह ने कहा सारी सल्तनत ले लो, सारी बादशाहत ले लो, मेरी बेटी से शादी कर लो। उसने कहा नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि ये समझ गया था, तवज्जो चाहता हूं खास तौर पर नौजवान जवान, ये समझ गया था कि मैंने अपने मालिक को एक झूठा सजदा किया था, तो मेरे मालिक ने सारी बादशाहत मेरे कदमों में लाकर डाल दी। अगर एक सच्चा सजदा कर लेता तो वो मालिक मुझे क्या नहीं देता, अब समझ में आया वो एक सजदा जो असरे आशूर हुसैन इब्ने अली ने किया था, उसके नतीजे में परवरदिगार आलम ने सब कुछ हुसैन इब्ने अली को दे दिया। वो एक सजदा जो हुसैन इब्ने अली ने किया था, कुल इबादाते जहां उस एक सजदे पर निसार। अजीब है, हमने इस जाविये से ये बातें बयान की ही नहीं कभी। कुल इबादाते जहां उस एक सजदे पर निसार, रेग जारे करबला पर जो अधूरा रह गया। कभी आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो दुआ पढ़िएगा जो इमाम ने आखिरी सजदे में पढ़ी है, मफातिहुल जनान में लिखी हुई है वो दुआ। तीन शाबान के आमाल में वो दुआ है कि अगर इंसान तीन शाबान के आमाल अंजाम देना चाहे तो ये दुआ पढ़े। और किस तरह से हुसैन इब्ने अली अपना सब कुछ परवरदिगार आलम के राह में देने के बाद मुतमईन सजदे में सर झुकाए हुए हैं, और उसके बाद भी लहजा नहीं बदला। तवज्जो चाहता हूं, लहजा, इसे कहते हैं बंदगी। और यही वो रूह है जो परवरदिगार हमारे अंदर देखना चाहता है। तुम हुसैन नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, सोचना भी छोड़ दो, मगर हुसैन के रास्ते पर तो चल ही सकते हो। ये रास्ता तो बंद नहीं है, कोशिश तो करो, रास्ते पे तो चलो। हुसैन नहीं बन सकते मगर हुसैनी तो बन सकते हो। जब दुनिया तुम्हें देखे तो समझ ले कि तुम्हारी डायरेक्शन, तुम्हारा रुख इधर है, इधर नहीं है। कम से कम इतना तो हो, रुख तो उधर हो जाए कि सब कुछ परवरदिगार आलम के राह में देने के बाद कह रहे हैं या गियासल मुस्तगीसीन, क्योंकि हुसैन ने इस रूह और इस बंदगी को महसूस कर चुके हैं कि अगर हुसैन इब्ने अली कुछ भी कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, सब परवरदिगार आलम का था। अब ये मैं हजार बार ये जुमला मैं नकल कर चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि जब भी ये जुमला कहता हूं अजीब सा लुत्फ महसूस करता हूं अपने अंदर। जाहिरन आप हजरात के सामने कभी ये जुमला नहीं कहा, लिहाजा कह रहा हूं, दूसरी जगहों पे कहा है कि कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली की आगोश में जो था, हुसैन इब्ने अली ने सब कुछ परवरदिगार के राह में दे दिया। जो था अकबर से लेकर असगर तक सब दे दिया परवरदिगार को। उसके बाद, ये मेरे उस्ताद का जुमला है, उसके बाद हुसैन ने अपना दामन भी झाड़ दिया। कभी होता है ना, हमारे दामन में कुछ होता है, हम दामन से कोई चीज उंडेल देते हैं मगर दामन पर कुछ जर्रात लगे रह जाते हैं, तो हम वो दामन झाड़ देते हैं कि देखो अब कोई जर्रा लगा नहीं रहा। हुसैन इब्ने अली की आगोश में जो था सब कुछ परवरदिगार आलम के राह में देने के बाद हुसैन ने अपना दामन भी झाड़ा कि मालिक देख ले कुछ भी नहीं बचा। उसके बावजूद जब हुसैन परवरदिगार आलम के मुकाबले आए हैं तो कह रहे हैं या गियासल मुस्तगीसीन, ऐ फरियाद रसों की फरियाद रसी करने वाले। देखें, उबूदियत अपनी मंजिल उरूज पर है। अगर किसी को उबूदियत सीखनी है तो हुसैन इब्ने अली से सीखे। ये है वो मरहला के जिस पर परवरदिगार आलम लाना चाहता है। तुम्हारा सब कुछ मैं देख लूंगा, बस तुम वो करो जितना मैंने कहा है। अपना आदम अतेनी फी मा अमरतुक, अजीब जुमला है जिसे कुछ सीखा, ऐ आदम के बेटे जो मैंने कहा है बस उतना कर। अगला जुमला वला तुअल्लिमनी मा युस्लिहुक, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तेरी बेहतरी किसमें है, जो कहा है वो कर, जितना मैंने कहा है बस उतना अंजाम। तेरी बेहतरी किसमें है ये मैं जानता हूं। जो भी परवरदिगार आलम के राह में आए तो परवरदिगार आलम उसके लिए बेहतरीन मसलहत नाजिल करता है। क्या हजरत सैयदा कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, का ये जुमला है, सोने के हुर तारों से लिखने वाला ये जुमला। हर बंदे खुदा के सामने ये जुमला होना चाहिए। हर वो शख्स जो अपनी मसलहत हासिल करना चाहता है उसके सामने जुमला होना चाहिए। क्या कह रही है जनाब सैयदा, मन असअदा इलल्लाह अफजला इबादते अहबतल्लाह इलैह अफजला मसलहते, जो اپنی بہترین عبادت اللہ کی طرف بھیجتا ہے تو اللہ اپنی بہترین مصلحت اس کی طرف نازل کرتا ہے۔ اب یہ دیکھنے میں دو جملے ہیں، لیکن جو بھی خدا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پورا سفر ہے، آنے اور جانے۔ ایک سفر وہ ہے جو انسان اپنے یہاں سے پروردگار تک کرتا ہے۔ اگر کوئی پروردگار عالم تک سفر کر جائے تو پھر وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا، بلکہ پروردگار کے مصلحت لے کر اترتا ہے۔ جو دو جملوں میں نے بتایا، ورنہ اس پر تو اشرا بھی بیان کیا جائے تو کم ہے۔ یہ پورا سفر ہے، کیونکہ ایک سفر وہ ہے جو یہاں سے وہاں تک کا ہے، اور ایک سفر وہ ہے جو وہاں سے یہاں تک کا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو جلدی جلدی وہ سفر بیان کر دوں دو جملے میں۔ اگر انسان متوجہ ہو جائے، اگر انسان متنبہ ہو جائے اور انسان یہ کہے کہ مجھے پروردگار عالم کی طرف سفر کرنا ہے، میں پروردگار عالم تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو چار مرحلے ہیں، اسے یہ مرحلے عبور کرنے ہیں۔ اگر کوئی انسان مجھ جیسا، اپنے لیے بات کروں، اگر مجھ جیسا کوئی انسان پہلا مرحلہ بھی عبور کر لے تو شکر خدا کرے، جو دوسرے مرحلے پر پہنچ جائے تو وہ مزید شکر خدا کرے، تیسرا مرحلہ عجیب، چوتھا مرحلہ تو بس اس میں معدودہ اور بہت ہی کچھ افراد ہیں جو پہنچ پاتے ہیں، ورنہ انسان اگر انسان کوشش کرے تو پہلے دوسرے تیسرے مرحلے تک رک جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے خدا تک پہنچنا ہے۔ اب یہ کوئی مرحلہ آسان ہے؟ میں جلدی جلدی مرحلے بیان کروں، تھوڑی سی وضاحت کرتا اسی پر بات تمام ہو جائے گی۔ انسان کو اپنے آپ سے سفر شروع کرنا ہے اور پروردگار عالم تک پہنچنا ہے، یہ پہلا مرحلہ، یہ پہلا سفر۔ پھر جب انسان وہاں پہنچ جائے تو صفات خدا میں سیر کرنی ہے، یہ دوسرا مرحلہ۔ پھر جب انسان صفات خدا میں سیر کرتا، جو چاہتا ہوں کام آئے گا خاص طور پہ نوجوان، پھر جب انسان صفات خدا میں سیر کر لے اور معرفت خدا میں سیر کر لے تو انسان پروردگار عالم کے یہاں سے دوبارہ یہاں اترے گا، لیکن اکیلا نہیں اترے گا، پروردگار عالم کے ساتھ زمین پر اترے گا۔ اب ظاہر ہے کہ پروردگار کا مادی وجود نہیں ہے، صفات خدا کے ساتھ نیچے اترے گا، عالم ولایت کے ساتھ نیچے اترے گا، لیکن جب نیچے آ جائے تو پروردگار چاہتا ہے یہ ایک اور سفر کرے جو یہاں سے وہاں ختم ہو، مگر اب اکیلے نہ جانا، دوسروں کا ہاتھ تھام کر اوپر لے جانا، جو نہیں پہنچ پائے انہیں بھی لے جانا۔ یہ چار مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے پر ہماری بات تمام ہو جائے تو بات تمام ہو جائے۔ پہلا مرحلہ جو اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے اور پروردگار پر ختم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، راستہ بہت طولانی ہے مگر بہت آسان ہے، توجہ چاہتا ہوں، راستہ اتنا طولانی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا۔ جب انسان پروردگار عالم کے سامنے آتا ہے تو کہتے آہ من قلت الزاد وطول السفر، زاد راہ قلیل، سفر بہت طویل ہے، امیر المومنین جیسا انسان۔ لیکن آسان بہت ہے پہنچنا، بہت طولانی ہے سفر مگر آسان ہے۔ چونکہ یہ جملہ یاد رکھیے گا، دین سمجھنا مشکل ہے، دین سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، دین سمجھنا مشکل ہے، دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ دین سمجھنے میں 50-60 سال لگتے ہیں، اگر دین سمجھنا چاہے انسان 50 سے 60 سال بعد، پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں اب کچھ حد تک سمجھ چکا ہوں، صرف میں چند مسئلے معلوم کرنے سے دین حاصل نہیں ہوتا۔ اگر میں چند مسئلے معلوم کر لوں اور توضیح المسائل پڑھ لوں، کچھ اخلاق کی کتابیں پڑھ لوں، کچھ حدیث کی کتابیں پڑھ لوں، ایسے دین حاصل نہیں ہوتا۔ دین سمجھنے کی بات ہو رہی ہے کہ دین کا نظام سمجھے انسان، اتنی آسانی سے نہیں سمجھ پاتا۔ 50 سے 60 سال انسان اگر لگائے اور درمیان میں کوئی وقفہ نہ ہو اور ساری توجہ اس کی طرف ہو، تب جا کر انسان 50 سے 60 سال کے بعد کہتا ہے کہ اب میں نے دین سمجھ لیا ہے کچھ حد تک۔ لیکن دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، چونکہ وہ مالک وہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اور چھوٹے چھوٹے کم کم آنسوؤں سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا دین حاصل کرنا کتنا مشکل، लेकिन अगर इंसान दीन के रास्ते पर कदम रखे तो परवरदिगार आलम को हासिल करना बहुत आसान है। दीन समझना मुश्किल है। या सरी अर रिजा, वो मक्खी के पर बराबर भी अगर आंख में आंसू आ जाए तो वो मालिक राजी हो जाता है, परवरदिगार राजी हो जाता है। अब देखें दीन पर अमल करना, परवरदिगार ने छोटे छोटे बहाने रखे हैं राजी हो जाने के लिए। आम तौर पर हम छोटे छोटे बहानों पर नाराज होते हैं, जरा सा कुछ हमारे मिजाज के खिलाफ हो जाए तो हम नाराज हो जाते हैं। वो मालिक छोटे छोटे बहाने रखता है राजी हो जाने के लिए, छोटे छोटे बहाने। एक मर्तबा जब पानी पियो तो कह दो अल्लाहुम्मा अन कतलतल हुसैन, मैं राजी हो जाऊंगा। किसी की छोटी सी मदद कर दो, मैं राजी हो जाऊंगा। किसी टूटा हुआ दिल किसी का जोड़ दो, मैं राजी हो जाऊंगा। किसी की मुश्किल हल कर दो, मैं राजी हो जाऊंगा। आपने देखा कितना आसान है। हजरते ये वाकई आम तौर पर मैं नहीं सुना पाता, लेकिन यहां सुना देता हूं आपकी समातों पर भरोसा करते हुए। आयतुल्ला तहरीरी जो भी हयात हैं, मोहम्मद बाकिर तहरीरी, ये नहीं इनके वालिद, आयतुल्ला महमूद तहरीरी अल्लामा तबतबाई के शागिर्द थे ये, और ये तेहरान में रहते थे। अल्लामा तबतबाई बड़ा नाम है, अल्लामा तबतबाई कुम में रहते थे। ये मानवियत इनसे हासिल करते थे, इनके शागिर्द थे सैर सलूक में। ये तेहरान से कुम आते थे इनसे दस्तूरुल अमल लेने के लिए। आरिफ जो काम बताता है उसे कहते हैं दस्तूरुल अमल, जो अपने शागिर्दों को बताता है। ये लेने आते थे। एक मरहला ऐसा आया कि ये बीमार हो गए, मरीज हो गए, और ये तेहरान नहीं आ सकते थे। इन्होंने खत लिखा कि अल्लामा मैं अब कुम नहीं आ सकता, कमजोर हो गया हूँ, मरीज हो गया हूँ, आप मुझे कोई एक उस्ताद यहाँ तेहरान में बता दें, मैं उनके पास जाऊँ, क्योंकि सफर बहुत तुलानी है कुम से तेहरान तक का। मैं यहीं तेहरान में किसी के पास चला जाऊं और कस्बे फैज करूं, आप मुझे बताएं कोई। अल्लामा ने वहां कोई उस्ताद बताया, कहा कि जाइए आप फुलां एक हैं आयतुल्ला काजी के शागिर्द, आप उनसे कस्बे फैज हासिल कीजिए। आयतुल्ला महमूद तहरीरी उनके दर्स में गए, और कितनी चाहतें लेकर गए क्योंकि अल्लामा ने भेजा है। दर्स का पहला जुमला सुना और वापस आ गए, और गोया मायूस हो गए। उन्होंने सुना कि उनके उस्ताद ये कह रहे हैं कि अल्लाह तक पहुंचना ऐसे है, ऐसा है कि जैसे पलकों से पहाड़ खोदना। इन्होंने जैसे ही ये जुमला सुना वापस आ गए। पलकों से पहाड़ खोदना नामुमकिन है। जब अल्लाह तक पहुंचा ही नहीं जा सकता तो मैं कोशिश क्यों करूं, मैं मेहनत क्यों करूं, मैं जहमत क्यों करूं, मशक्कत क्यों करूं। वापस आए, फिर इनका किसी वजह से अल्लामा से मिलना हुआ, तवज्जो चाहता हूं अल्लामा से मिलना हुआ, अल्लामा तबतबाई से। और इन्होंने जाकर कहा कि अल्लामा आपने मुझे जिन उस्ताद के पास भेजा था मैंने उनका बस एक ही जुमला सुना, और गोया ऐसा लगता है कि मैं परवरदिगार तक पहुंच ही नहीं सकता, सारी मेहनत बेकार। आप मुझे बताइए कि क्या वो जुमला सही है। अल्लामा ने फरमाया कि बताओ उनका जुमला क्या था। इन्होंने बताया कि वो फरमा रहे थे कि अल्लाह तक पहुंचना ऐसा है जैसे पलकों से पहाड़ खोदना। ये जुमला सही है। अब उलमा का तरीकाकार है, उलमा एक दूसरे को ऐसे ही रद्द नहीं करते। अगर कोई आलिम, एक आलिम अगर आलिम है तो वो हलीम भी है, उसके अंदर इल्म है तो हिल्म भी होता है, फौरन किसी को रद्द थोड़ी करता है। अल्लामा ने कहा हाँ जुमला सही है, मगर हम जिसके रास्ते पर चल रहे हैं वो मालिक रहीम भी है और करीम भी है। रास्ता तुलानी है मगर वो मालिक रहीम है। मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूं वो 10 कदम बढ़कर मुझे सहारा दे देता है, रास्ता छोटा हो जाएगा। तो परवरदिगार आलम तक पहुंचना आसान है। कितना आसान है आपको मालूम है। अब यहां उराफा ने कुछ दराजात कहिए, मराहिल कहिए, आखिरी बात कर रहा हूं उसके बाद बात तमाम कर रहा हूं, मनाजिल कहिए, वो जिक्र किए हैं। मसलन सद मैदान लिखा गया, एक किताब है सद मैदान, 100 मैदान, और वो कहते हैं 100 मैदान यानी 100 मरहले, पहला मरहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहां तक कि जो बिल्कुल आखिरी मरहला है वहां तक फिर इंसान परवरदिगार तक पहुंच जाएगा। बास ने कहा नहीं, 100 मैदान तो बहुत दूर हो जाएगा, 70 मंजिलें हैं परवरदिगार तक पहुंचने के लिए। 70 मरहले, जैसे मंजिल होते हैं ना, बस स्टॉप होता है, इसी तरह से मंजिलें होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहां तक के इंसान आखिरी मंजिल पर पहुंच जाएगा। मंजिल यानी स्टॉप, अब वो किस तरह से मंजिल होगा उसकी वजाहत नहीं कर पाऊंगा। किसने कहा नहीं नहीं, 70 भी बहुत दूर है, 70 नहीं 10 मरहले हैं परवरदिगार तक पहुंचने के लिए। तारे निशापुरी ने कहा नहीं, दस भी नहीं, सात मंजिलें हैं परवरदिगार तक पहुंचने के लिए। किसी ने कहा नहीं नहीं, तब जो चाहता हूं खास तौर पर नौजवान, परवरदिगार तक पहुंचना इतना दूर थोड़ी है, परवरदिगार आलम तक का सफर इतना दूर थोड़ी है, परवरदिगार तक का सफर बस दो कदम का सफर है। तवज्जो चाहता हूं, परवरदिगार आलम तक पहुंचने का सफर बस दो कदम का सफर है। कौन से दो कदम? पहला कदम अपने नफ्स पर रखो, दूसरा कदम परवरदिगार आलम की बारगाह में रखो। लेकिन इतना कम हो गया रास्ता। और फिर किसी आरिफ ने कहा कि यह भी बहुत दूर कर दिया है आपने, जैसे ही परवरदिगार आलम के राह में अपने आप पर कदम रखा, वैसे ही परवरदिगार बढ़कर हमें आगोश में उठा देता है। देखें, हाँ, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, परवरदिगार आलम ने ऐसे अमली नमूने रखे हैं कि जिन्होंने सिर्फ एक कदम उठाया और परवरदिगार आलम ने उन्हें यहां से उठाकर वहां पहुंचाया। महीनों में नहीं, रातों में नहीं, लम्हों की बात कर रहा हूं, लम्हों में खुदा ने यहां से वहां पहुंचाया है। जनाबे सुहैर कैन एक मिसाल है, हुर इब्ने यजीद रिहाई, जनाबे हुर एक मरहल यानी चंद लम्हों में जनाबे हुर ने यहां से वहां तक का सफर किया है। कैसे मुमकिन है? ऐसे मुमकिन है कि एक सच्ची तौबा कि जिससे हुसैन राजी हो जाएं, वो सच्ची तौबा ना ये कि तुम्हारे गुनाह माफ करा देगी, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगी। मरहले हैं ना, और यही हुआ। वो एक कदम जो उठाया था, क्योंकि हुर ये सोच रहा था कि कैसे मैं उसे ले आया घेर कर कि जिसने मुझे नहीं मेरे जानवरों को भी सैराब किया था। और यही वो चीज थी जो हुर को मारे डाल रही थी। शबे आशूर हुर यही सोचता रहा, मेरे बच्चों ने तो पानी पी लिया, मगर हुसैन के बच्चे कह रहे हैं अल आतश अल आतश। और यही बात थी कि जो हुर को तड़पा रही थी। बस दो जुमले सुन लीजिए, क्योंकि हमने जो अपने असातीद से सीखा है वो यही है कि इंसान कभी कभी हुसैन इब्ने अली पर बैठकर आंसू बहाए, और ये इंसान का मामूल होना चाहिए। माह रमजान में हमने अपने असातीद को देखा है कि जब कोई दर्स होता है या तदरीस होती है तो उसके बाद कुछ जिक्र मुसीबत बयान करते हैं, क्योंकि हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे। उलमा जानते हैं कि ये जिक्र क्या कर रहा है। आयतुल्लाह मिज़बा कहते हैं कि हमें हुसैन पर रोने की वजह से तुम लोगों को मालूम नहीं कि हो क्या रहा है, क्योंकि अगर मुश्किल नाजिल होती तो पता चलता कि मुश्किल है। कितनी ऐसी मुश्किलात हैं जो आंसुओं की वजह से नाजिल ही नहीं हो पाती, वहीं पे खत्म हो जाती, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल पाता, क्योंकि परवरदिगार चाहता है कि हुसैन की बारगाह में तुम्हारा दिल टूटे। दिल टूटना चाहिए जिस तरह से हुर का दिल टूटा। और हुर ये सोचता रहा कि मैं उसे ले आया कि जिसने मेरे जानवरों को भी पानी पिलाया था। यही हुआ था ना कि जब हुर ने रोका है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और कहा कि मैं आगे नहीं जाने दूंगा। ये वाकयात अजीब है, कहां मिलेगा ऐसा करीम आका, कहां मिलेगा ऐसा रहीम आका। और वो कहता है कि मेरा सारा लश्कर प्यासा था। हुर के लश्कर का एक सिपाही बताता है कि सारा लश्कर प्यासा था, हुसैन इब्न अली को जब हमने रोक लिया तो हुसैन ने कहा अब्बास इन सबको पानी पिलाओ, उनके पास पानी नहीं है, यहां मशकों के दहाने खोल दिए गए। और यही नहीं, कहने लगे उस फुल कौम वरश फुल खैला तरशीफा, इन्हें भी पानी पिलाओ, इनके जानवरों को भी पानी पिलाओ। और कहने लगे जब तक ये जानवर सैराब ना हो जाए सामने से पानी ना हटाना। जुमला सुनेंगे। हुर के लश्कर का एक सिपाही कहता है मैं इतना प्यासा था कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं खुद से उठकर पानी नहीं पी सकता था, हुसैन दूर से ये मंजर देख रहे थे। कहते हैं मैंने देखा हुसैन खुद आए और अपने चुल्लू से खुद मुझे पानी पिलाया। और फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो हुसैन कहने लगे जाओ हुर जाकर अपनी नमाज पढ़ो। कहा नहीं आका ऐसा नहीं हो सकता, नमाज तो आप ही के साथ होगी। बस एक जुमला कहना चाहता हूं उसी बात पर बात तमाम कर दूंगा। नहीं आका नमाज तो आप ही के साथ होगी। और उसके बाद हुर ने इमाम की इमामत में नमाज जमात अदा की। अब जब हुसैन जाने लगे तो हुर ने लिजामे फरस पे हाथ डाला, कहने लगे सकलत का उम्मू का या हुर, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे क्या चाहता है, मातुरी चाहता क्या है। बस यही वो जुमला था जो हुर के दिल पे लग गया और हुर ने अपना सर झुका लिया और कहने लगा आका मैं आपकी माँ को कुछ नहीं कह सकता। शायद यही वो वजह थी कि सारे लश्कर यजीद में से हुर निकल के आया और हुसैन के चौखट पे सर रख दिया। ए आका तौबा करने आया हूं। हुसैन ने आवाज दी हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। ऐ मेरे मालिक सिर्फ हुर को क्यों निकाला। शायद आवाज आए हुर ने मेरी कनीज का ख्याल रखा, हुर ने मेरी सैयदा की इज्जत की, हुर तुमने फातिमा का ख्याल रखा, मैं तुम्हें लश्करे यदीद से निकाल कर सादतों तक पहुंचा दूंगा। जो भी मेरी फातिमा का एहतराम करे उसे अकेला ना छोड़ूंगा। इलाही बिहक ज़हरा व अबीहा व उम्मेहा व बालेहा व बनीहा व सिर मुस्तौदा फीहा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर, हमारी इबादतों को कबूल फरमा, बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फरमा, अहले बैत के चाहने वाले जहाँ कहीं भी हैं उन सब के जान माल इज्जत व आबरों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार अहले बैत के दुश्मन खास तौर पर अमरीका इसराइल वहाबियत इन सबको नीस तो नाबूद फरमा। परवरदिगार इसराइल को नीस तो नाबूद फरमा। परवरदिगार फलस्तीनियों की गैब से मदद फरमा। परवरदिगार उलमाए हक्का मराजे किराम खुसूसन मकाम मौजम रहबरी कसाया सरों पर बरकरार फरमा। परवरदिगार हम सबको इमाम ज़माने के अवान अंसार में शामिल फरमा बिहक मोहम्मद व आले मोहम्मद।